You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
770 ਐਮਬੀਐਨ ਅਸ਼ਿਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾ ਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਡੋਟ ਕਾਮ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900
Pakistan paise bhejna ab hua aasan. Use LimFi for international transfers. Canada se Pakistan paise minton mein pahunchte hain. Barah rast jisko aap bhejna chahe. Behtareen exchange rate aur paise pahunche minton mein. Download from Google Play or Apple Store. Code Pakistan istemal karne pe aapko mile $10 ka cashback. Apne phone se barah rast bank account mein paise bhejna shuru kare minton mein aur bina kisi fees ke. LimFi.
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुके है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है
मेरी सेविंग $350
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है मैंने सेव किए हैं $1,775
क्या चमत्कार किया मुझे भी गुर सिखाओ ना
भाई बात सादा सी है हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशा ने आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बाशा 6472903773
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ऑन्टेरियो नो अपॉइंटमेंट नीडेड ड्राइव थ्रू फैसिलिटी वन स्टॉप शॉप अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी क्विक ट्रक लियो 519-622-0660 quicktrucklube.com
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سامعین کو جو 770 ایم ڈائل پر سن رہے ہیں پروگرام ساز و آواز آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور ہمارے ساتھ گرما گرم خبریں لے کر شازیہ ملک صاحبہ بھی اسٹوڈیو پہنچ چکی ہے جناب اب سے لے کر تقریباً 8:15 تک ہمارا آپ کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا اگر آپ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں آواز اسٹیٹک ہے تو جناب ایک نمبر ڈائل کیجیے 6478724900 پر آپ ڈائل کیجیے اور کرسٹل کلیئر نہ ہی اینڈ ہے نہ اور ہے کرسٹل کلیئر بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے آپ کو آواز ہماری ریڈیو کی سنائی دے گی اس کے علاوہ آپ ای آواز ٹی وی پر ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ہماری ویب سائٹ ای آواز ڈاٹ کام تمام ہی آئی پی ٹی وی باکسز پر ای آواز ٹی وی کے نام سے ہماری نشریات دیکھی جا سکتی ہے جناب امید کرتے ہیں آپ کا ویکینڈ اچھا گزرا ہوگا تھوڑا بارش کے نظر رہا محلے میں جو ہے وہ ایک ہٹ پروگرام یونیورسل پروموشن اور عامر شمسی نے پیش کیا جس میں کیفی خلیل صاحب نے لائیو پرفارمنس دی ملٹن میں 805 سانتا ماریا بولی وارڈ میں آپ سب کی شرکت وہاں پہنچی 770 کے تمام ہی جو لسنرز ہیں آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے وہاں اپنی شرکت کو یقینی بنایا اور اس فنکشن کو اس پروگرام تو رنگ رنگ فیسٹیول کو کامیاب بھی بنایا حالانکہ صبح ساری رات بارش ہو گئی صبح بھی جب میں وہاں گیا تو اس وقت کافی پانی تھا لیکن دوپہر کے بعد سے یعنی 5-6 کے بعد سے جب سورج نکلا اور ماحول ایک مطلب رنگین ہو گیا تھا ماحول کیا بات ہے رات تک پہنچتے پہنچتے تو پروگرام سپر ہٹ ہو گیا تو تمام लिसनर्स को मुबारकबाद, आमिर शमसी एंड यूनिवर्सल टीम को भी मुबारकबाद। आगे बढ़ते हैं, शाजी जी को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। खबरें उनकी सीटी बार बार बज रही है, पता नहीं क्यों, देखते हैं उनका प्रेशर कुकर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। शाजी जी कैसी हैं?
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अच्छा, आज आपने एक बात नोट की है?
नहीं, नोट मैं करता नहीं हूँ।
अच्छा अच्छा, चलो मैं तुम्हें नोट करा दी, क्योंकि तुम्हारे पास नोट है नहीं ना। गरीब आदमी के पास जब नोट ही नहीं है तो वो नोट क्या करेगा?
हाँ,
है?
बात है।
अच्छा मैं, अच्छा तुमने जो शर्ट आज पहना हुआ है ना, एग्जैक्टली यानी वही पहना है जो आज गोरी साहब ने पहना हुआ था है? और मेरे कपड़ों का जो कलर है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जो गोरी साहब की वाइफ ने आज साड़ी पहनी हुई थी।
क्या बात
कर, तो मुझे लग रहा है कि आज 770 जो है ना, उनके साथ गोरी साहब के साथ उनकी फैमिली
नहीं, के साथ कोऑर्डिनेट याद आ गया मुझे।
हाँ, क्या
साला मैं तो एम्बेसडर बन गया। ऐसे
बिल्कुल ऐसे है, तो आपने एग्जैक्टली वैसा शर्ट पहना
है। मैंने नोटिस नहीं किया चीज को,
जाहिर है मैंने
कहा people they know me very well,
so hi, hi, hi.
sometimes they admire me,
oh, yeah,
they follow me. thank you
khush pasand ki sabse badi misal hai ji Aamir Ahmed oh apni tareefe karne ka itna shauk hai,
maine kaha ki aapne,
main khoobsurat aadmi, agar mere khoobsurat aadmi ki aapko khoobsurat
awaaz na aa rahi hai, aaj aapko pata kya ho, aaj to wo super moon hai, aaj to bilkul haath na rakhna, आज तो रोशनी अलग है, आज रोशनी अलग है।
नहीं नहीं, आज तुम जो है इसका मतलब है भिड़ों का छत्ता बना हुए हो, हैं? तो तुमको आज छेड़ना नहीं है हमको।
नहीं, आज सुपर मून।
अच्छा सुपर मून है, तो चांद आज बहुत चमक रहा है, इसीलिए मैंने कहा
आज चमकता है अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है ना,
सुपर मून है।
हाँ, तो इसीलिए ना,
सुपर।
हाँ हाँ, इसीलिए तुम आज सुबह से कोई काम शाम तो कर नहीं रहे हो, बातें इधर उधर फिरना, हाँ, और ड्रामे और मुझे तंग करना और औरों को तंग करना और मेरे पर आवाजें कसनी कि आपने खाना इतना खा लिया, आप इतना रोज खा ले।
मतलब मैं क्या बोलूं, एक बजे खाना,
हाँ,
उसके बाद मेरे
दो बजे
माजिद भाई आसपास कोई ऐसी आए होंगे,
हाँ,
दो के करीब,
हाँ,
करीब,
हाँ, फिर खाना,
खाना,
फिर समीना आई,
फिर समीना आई है मेरे ख्याल से 3:30 बजे करीब कुछ आसपास, फिर खाना। तो जिंदगी ऐसा लग रहा है कि आपकी खाने के बगैर कुछ है
नहीं। ये मेरी बात सुनो, हम खाते हैं हम तो ही खुश रहते हैं, तुम्हारी तरह सड़े नहीं बैठे रहते हैं, हर वक्त तुम सड़कुकड़ी बने होते, इतना इतना खाते हो जिस तरह चिड़ी खाती है, कोई हमारी तरह खाओगे तो।
हमारे माँ बाप ने बताया, एक बात समझाई थी बचपन से ही, समझा दी थी।
अच्छा
बेटा, हर चीज का हिसाब देना होगा।
अच्छा अच्छा,
हाँ
हाँ, अच्छा नहीं मतलब है, अगर अब तुम नहीं खा रहे तो हम भी ना खाएं, हम
आपने साथ
दे वो हम बदनसीब रह जाएं तुम्हारी तरह।
बदनसीबी नसीबी की तो बात ही नहीं है,
बिल्कुल वही बात है, यानी अल्लाह की इतनी नेमतें हैं और तुम जो है ये चम्मच दो चम्मच खा के ओ जी मेरा तो पेट भर गया। अब अगर तुम ऐसा कर रहे हो, तुम क्या समझो सारी दुनिया
है? मसला ये, अल्लाह मियां ने कहा यार ये नेमतें दी है मैंने,
हाँ,
और जब तक जिंदगी है उसी वक्त मतलब उस वक्त खाते रहो, अब हम उसको 20 साल में ही खा जाए, समझ रहे ना बात को? ऐसा नहीं कहा अल्लाह ने, कहा दिए बिल्कुल सारी नेमते अल्लाह की तरफ से।
हाँ, मतलब 80 ईयर्स तक रो रो के जीते रहो,
इतनी भी जिंदगी है 80 क्या, आप 100 साल जिए हमें से क्या, अपने खर्चे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 100 साल अल्लाह को।
अच्छा, अपनी बात को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हो कि जितना आपको अल्लाह ने दिया ज्यादा वो आपने 20 साल में नहीं खाना,
अच्छा
आपको जिंदगी जितनी मर्जी मिल जाए। अच्छा, अगर मैंने 100 साल का खाना 20 साल में खा लिया तो फिर मेरा तो वक्त आ गया ना भाई।
देखिए वो होता क्या है कि जिंदगी ऐसे गुजारे कि कल खत्म होनी है, इसका मतलब ही नहीं कि खाना आज ही खा जाए सारा, आपका
जिंदगी अगर कल खत्म हो रही है तो खाना आज ही खाना ना हमारा।
मैं वही कह रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट यही है,
हाँ,
कि आप इस चीज को फर्म बिलीव रखती हैं कि हाँ, जिंदगी कल का क्या पता,
हाँ,
आज ही खा लो
बिल्कुल,
टिपिकल पाकिस्तानी
बिल्कुल।
अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ
यू, यू आर प्राउड ऑफ मी ना, देखा मुझे पहले ही पता था, यू आर वेरी प्राउड ऑफ मी। हाँ,
खबरें सुना
कर लेते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी। अच्छा जी, आज बहुत जबरदस्त तुम्हारी स्टोरियां हैं हमारे पास, तो आज आपको सुनाएंगे। आज आपको एक बहुत जबरदस्त एक हम स्पेशल रिपोर्ट कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम पे। हाँ जी, एक बुक आई है, नहीं असल में एक बुक आई है, और उसमें जो उस वक्त के इंदौर के जो पुलिस चीफ थे ना, उन्होंने वो किताब लिखी है, और उनकी जो प्यार मोहब्बत अंडरवर्ल्ड के साथ चलता था, जैसे ही आपने हिंदी फिल्मों में देखा है ना, बिल्कुल वैसे ही सीक्वेंस हम भी लेके चलेंगे, आपको लग रहा होगा
रियल लाइफ,
हाँ रियल लाइफ सीक्वेंस था ये, तो ये आपको लगेगा हिंदी फिल्म चल रही है, तो वो हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे, तो प्लीज स्टे टैट है जी। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आपको पैसे अगर आपके पास है, शर्त ये है सबसे नंबर वन, आपके पास पैसे होने चाहिए, और अगर आपके पास पैसे हैं और आपने पाकिस्तान भेजने हैं तो फिर आप लेम्फाई के थ्रू भेजें, ठीक है जनाब। बड़ी जबरदस्त इंटरनेशनल ट्रांसफर की इनकी सर्विसेज हैं, और आपने प्रोमो कोड यूज करना है ई आवाज 10, और अगर आप पैसे भेजेंगे तो आपको जीरो जो है ट्रांसफर फी पड़ेगी। और आप इसको ऐप को डाउनलोड लेकर कर लें अपने एंड्रॉयड और एप्पल के ऊपर। कैशबैक आप जब करेंगे तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है ऑफ 250 कैनेडियन डॉलर्स उस पर आपको 30 डॉलर्स वापस मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपका जो ट्रांसफर है वो भी मिनटों में हो जाएगा, तो जो आपके प्यारे वहां पे बैठे हुए हैं उनको कोई बहुत ज्यादा घंटों या कोई हफ्ता 10 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली आप उनको बता दें कि भाई आपको पैसे जो है हमने भेज दिए, बस ई आवाज 10 आपने को जो प्रोमो कोड है वो यूज कर लेना, और आपके पैसे फटोफट वहां पे बटर की तरह मक्खन की तरह वहां पहुंच जाएंगे। और जनाब राजा बादशाह जो हैं उनका जो है ना ये नया फंडा कि मैंने आपके 1775 बचाने हैं, तो आमिर की वाइफ जो है ना उसकी जिंदगी के पीछे पड़ गई है, क्योंकि वो कह रही है कहां है वो 1775 जो तुमने बचाए हैं मुझे दो। अब आमिर जो अपनी जेब में रख के फिर रहा है वो किसी को दे नहीं रहा। बहरहाल जी, अगर आपको भी बचाने हैं 1775 तो आप राजा बादशाह से संपर्क करें। इनका नंबर है 6472903773। एंड जनाब डरहम समर फेस्ट ये होने वाला है अगस्त 31st से 1st सितंबर के बीच में। इसमें आ रहे हैं बड़े बड़े सितारे। ये हो रहा है 500 विक्टोरिया स्ट्रीट वेस्ट विटपी में। इसमें जो है वो 31st को गाने गाएंगे अहमद जहांजेब, और सितंबर 1st को फिर मौज़म अली खान जो हैं वो जगजीत सिंह की कुछ गजलें जो हैं वो गाएंगे। तो अगर आपको ये अटेंड करना है तो आप करें, और अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 416-897-1683, ठीक है जी। अच्छा जी, हम आपको बताएं जनाब, आज जो लीडर्स हैं बहुत सारे जो म्यूनिसपैलिटीज के, वो जो एसोसिएशन ऑफ म्यूनिसपैलिटीज ऑफ ऑन्टेरियो की जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उस सिलसिले में ओटावा में पहुंचे हुए हैं, और तकरीबन 444 म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स जो हैं जिसके अंदर ओवर 2000 के करीब अटेंडीज हैं, वो बात करना चाहते हैं डकफोर्ड साहब से। अच्छा, डकफोर्ड साहब से किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं? डकफोर्ड साहब कहते हैं जी कि मैं ऑलरेडी म्यूनिसपैलिटीज का और रीजन्स और ये जो सिटीज टाउन्स हैं हम इनका ऑन्टेरियो में बहुत ज्यादा ख्याल कर रहे हैं, लेकिन ये सारे जो हैं वहां पे पहुंचे हुए हैं ये कहते हैं कि नहीं, हमको क्लाइमेट चेंज के लिए, हमको अपना ट्रांजिट जैसे फंड करने के लिए और होमलेसनेस के लिए, मेंटल हेल्थ एडिक्शन के लिए हमको बहुत सारे पैसे चाहिए, हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो हैं वो हमारे पूरे नहीं पड़ रहे हैं। कैरन रेडमन जो हैं रीजनल चेयर फॉर वाटरलू रीजन, उन्होंने कहा जी कि प्रॉपर्टी टैक्सेस जो हैं वो फंड नहीं कर रहे हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, और हम जो हमने म्यूनिसिपल सर्विसेज देनी है वो भी हमारी पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए हमको पैसे चाहिए। इसी तरह कॉलिन बेस्ट जो है हॉल्टन के काउंसलर, वो कह रहे हैं कि 1400 होमलेस एनकैंपमेंट्स थे ऑन्टेरियो में 2023 में, तो और इसके साथ साथ 2500 लास्ट ईयर ओपियोइड की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो अगर हमको जो है वो पैरामेडिक्स जो हैं उनको और इमरजेंसी रूम्स को जो कि ऑलरेडी ओवरवेलम्ड हैं यहां पे सर्विसेज हमको करनी है तो हमको फंडिंग चाहिए। ओटावा के जो मेयर हैं मार्क सटक्लिफ वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रांजिट को फंड करने के लिए पैसे नहीं है। तो ये ना सिर्फ प्रीमियर फोर्ड से बल्कि फेडरल हाउसिंग मिनिस्टर जो है शॉन फ्रेजर उनसे भी मिलना चाहते हैं। ये कॉन्फ्रेंस जो आज से शुरू हुई है ये वेंसडे के दिन खत्म होगी। आज आपको पता ही है कि चूंकि वीकेंड के ऊपर बहुत ज्यादा बारिशें हुई थी तो फ्लड्स आए हुए हैं मिसिसागा के अंदर, और ये जो फ्लड्स हैं ये बिजी रैंप्स जो हैं लिंक कर रही हैं दो हाईवेज को मिसिसागा में, ये सारी की सारी फ्लड हुई हुई है। ओबीपी ने अपने एक्स के ऊपर कहा है कि ये जो रैंप है ईस्ट बाउंड लेन्स ऑफ हाईवे 403 टू नॉर्थ बाउंड लेन्स ऑफ हाईवे 410 ये इस वक्त क्लोज की गई हैं रिपेयर्स के लिए, और ये जो है ये पता नहीं है कि ये कब खुलेंगे। वीकेंड के ऊपर जो रेन्स हुए थे उसके वजह से 410 के अंदर 5 व्हीकल्स भी फंस गए थे नियर हाईवे 401, लेकिन इसमें इंजरीज तो कोई रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन मिसिसागा फायर जो है उसने एक्स के ऊपर कहा कि इन लोगों को बड़ी एहतियात से फिर इनके व्हीकल्स में से निकाल लिया गया था, इसके अंदर जो है फायर फाइटर्स ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी, और अब जो क्रूज हैं वो इधर जो ये ब्लॉक्ड कैच बेसन हैं इनको क्लियर करने के अंदर लगे हुए हैं। ऑन्टेरियो के मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उन्होंने अब सिंस देन दे हैव टेकन ओवर, और वो भी इस टास्क के अंदर ये सारा इनको सुविधाएं दे रहे हैं। तो मतलब आप रोते रहते हो कराची में फ्लड्स आ गए, ये हो गया वो हो गया, इधर देख लो जी ये साडा कनेडा जड़ा है इधर कितने जो है ये डेवस्टेटिंग ذرا سی زیادہ بارش ہو جائے تو یہ آ جاتے ہیں. یعنی دس از فرسٹ ورلڈ کنٹری. چھ لوگوں کو جی کسٹڈی میں لیا گیا ہے کیونکہ ویکینڈ کے اوپر بہت پروٹیسٹ چل رہے تھے نارتھ یارک اور اسکارڈرو میں, اور ٹورنٹو پولیس جو ہے اس نے کہا جی کہ ہم نے اریسٹ کیے ہیں اور تین لوگوں کو ہم نے ان کے اوپر ہم نے چارجز بھی لگائے ہیں کیونکہ جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے سنڈے آفٹر نون کو نارتھ یارک میں, یہ انسیڈنٹ جو تھا یہ شیپرڈ ایونیو ویسٹ اور بیتھر اسٹریٹ کے پاس ہوا تھا. اکارڈنگ ٹو پولیس یہ جو پروٹیسٹ تھے اس کے دوران جو ہے فائر بھی ایک جگہ پہ لگ گئی تھی اور ایک آدمی جو ہے 80 ایئرز میں تھا تو 80s میں تھا اس کو ہاسپٹل پھر لے کر گئے تھے, حالانکہ اس کی جو انجریز ہیں وہ نان تھریٹننگ ہے لیکن پھر بھی اس کو امیڈیٹ فرسٹ ایڈ دینی تھی. اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے تین اور لوگوں کو بھی جو پروٹیسٹ کر رہے تھے اسکارڈرو میں نیئر نگٹ ایونیو اینڈ شارٹنگ روڈ بٹوین میکاون اینڈ مارکم روڈ ان کو بھی وہاں سے اریسٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے کہا جی کہ بہت آج زیادہ احتجاج کیا ہے ٹورنٹو پولیس ایسوسی ایشن نے, انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ بہت زیادہ وائلنٹ ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے تین آفیسرز جو ہیں وہ بھی جو ہے ہرٹ ہوئے ہیں. ایک اور انسیڈنٹ تھا جس کے اندر ان کو بلایا گیا تھا پولیس کو, ایک بریک اینڈ انٹر کا معاملہ تھا اور اس میں پولیس کے ساتھ بہت وائلنٹلی ان لوگوں نے ریزسٹ کیا جس میں کہ ہمارے تین پولیس افسر ہرٹ ہوئے ہیں, تو ان کا خیال ہم کو کرنا ضرورت ہے. ٹی پی اے جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے 8,000 سویلین اور یونیفارم ممبرز کو, تو انہوں نے آج جو بہت زیادہ کنسرن شو کیا کہ لوگ اب پولیس آفیسرز پہ بھی بہت زیادہ اٹیکس کر رہے ہیں. اے ایف پی کی رپورٹ ہے جی, اور اس کے مطابق رشیا کے جو فارن منسٹر ہیں سرجے لیوروف, انہوں نے آج کہا ہے کہ یو ایس کلیئرلی اس نے آرڈرز دیے تھے کہ 2022 کا جو اٹیک ہوا تھا نارڈ سٹریم کے اوپر اس کے لیے اس کی جو گیس پائپ لائن تھی جو کہ بلو پھر کر دی گئی تھی. جرمن پروسیکیوٹرز جو ہیں انہوں نے لاسٹ ویک جو تھا وہ ایشو کیا تھا ایک اریسٹ وارنٹ فار یوکرینین کہ اس نے جس کے بارے میں الیج کیا گیا تھا کہ اس نے اس پائپ لائن کو بلاسٹ کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ رشین گیس جرمنی لے کر آتی تھی انڈر دا بالٹک سی. وال اسٹریٹ جرنل نے اس سے پہلے ہی رپورٹنگ کی تھی کہ ایک یوکرینین کرو جو تھا اس کو اپروول کیو سے اس وقت کے جو ملٹری کمانڈر ان چیف تھے ویلری زولوکسنی انہوں نے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا اس پلان کو آپ آگے لے کے جائیں. سرجے لیوروف صاحب جو کہ اس وقت آذربائیجان میں ہیں انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہم کو پتا ہے کہ یہ آرڈرز کہاں سے آئے ہیں, یہ جو ویسٹ میں سب سے اوپر بیٹھا ہے یعنی کہ جو سب سے اوپر ہے وہ تو یو ایس اے ہی ہے نا, تو وہ اس کی طرف سے واشنگٹن کی طرف سے جو ہے یہ ڈائریکٹ آرڈرز آئے تھے. اور آپ نے یہ جو بات پھیلائی تھی ویسٹرن میڈیا کے اندر کہ ایک گروپ آف ڈرنکن آفیسرز تھے انہوں نے یہ اڑائی تھی, کیسے جو ڈرنک ہے آدمی وہ اتنا زیادہ نیچے جا کے پائپ لائن کو کیسے اڑائے گا, تو یہ بڑا پلانڈ تھا. اس سے پہلے جو ہے وہ وال اسٹریٹ جرنل نے کہا تھا کہ جی پریزیڈنٹ زیلنسکی جو تھا اس کو اس پلان کے بارے میں پتا تھا اور اس نے اس کا آرڈر دیا تھا, لیکن سی آئی اے کو اس کے بارے میں پتا چل گیا تھا اور سی آئی اے نے امیڈیٹلی زیلنسکی صاحب کو منع کیا تھا. تو زیلنسکی صاحب نے پھر منع تو کیا تھا لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی اور جنہوں نے پھر وہ کام کرنا تھا وہ چلے گئے تھے اور انہوں نے پھر وہ جو پائپ لائن ہے وہ اڑائی تھی. تو یعنی سازشیں آپ دیکھیں کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہی ہے کہ جرمنی نے بہت زیادہ سفر کیا تھا, تو بہرحال نقصان تو رشیا کو پہنچانا تھا مطلب تو ان کو اس کو پہنچایا گیا. یو ایس قطر اور ایجپٹ نے آج جناب اپنی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک جو پروپوزل دیا ہے غازہ کی وار کو اینڈ کرنے کا اور اسرائیلی کیپٹیوز کو اور جو حماس کے سوری جو پیلسٹینین جو کیپٹیوز ہیں ان کو ریلیز کرنے کا, اس کے اوپر ہم جلدی ہی امپلیمنٹیشن شروع کریں گے. جوائنٹ سٹیٹمنٹ نے کہا کہ یہ جو سیز فائر ٹاکس دوحہ کے اندر چل رہی ہیں یہ بڑی سیریس اور کنسٹرکٹیو رہی ہیں اور یہ ٹاکس جو ہیں تھرسڈے سے چل رہی ہیں جس میں کہ کہا جا رہا ہے کہ اس وار کو روکا جائے کہ کہیں یہ ریجنل وار نہ بن جائے. تو اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ وی آر آن پیتھ ٹو سیونگ لائف اینڈ گیونگ ریلیف ٹو دا پیپل آف گازا ڈی ایسکلیشن آف ریجنل ٹینشنز. اس میں رکھا ہے انہوں نے جی کہ جو لیٹسٹ پروپوزلز ہیں اس کو جو ہے اس کی ساری جانکاری جو ہے ظاہر ہے کہ بائیڈن صاحب کے پاس بھی ہے اور بائیڈن صاحب جو ہے بہت غور سے ان تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بائیڈن صاحب نے وارن بھی کیا ہے کچھ پارٹیز کو مڈل ایسٹ میں کہ آپ ان ٹاکس کو انڈر مائن کرنے کی کوشش نہ کریں. آج رپورٹرز کے ساتھ بات کر رہے تھے بائیڈن صاحب بھی اور انہوں نے بھی کہا کہ وی آر مچ کلوزر टू यू नो कंक्लूड दिस डील बट वी आर स्टिल नॉट देयर. आपको पता ही है कि एंथनी ब्लिंकन साहब जो है इस वक्त पहुंचे हुए हैं वहां पे मिडिल ईस्ट में. उन्होंने इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है एल सीसी उनके साथ भी मुलाकातें की हैं और जो कतर के अमीर और उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ भी कॉन्स्टेंटली मुलाकातें वो कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि इस चीज को अब बढ़ाया जाए. तो आज ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है इसमें लग रहा है हमास की जो सॉरी जो नतन्याहू साहब की जो अभी एक प्रेस रिलीज आई है इसराइल से उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम बिल्कुल ये यूएस प्रपोजल जो है इसको मानने को तैयार हैं. हमास की तरफ से अभी कोई हामी नहीं भरी गई है. हमास का कहना है कि ये डील जो है सिर्फ ये हॉस्टेज वापस लेने के लिए कर रहे हैं. हो सकता है कि अगर ये वापस ले लें और फिर से ये वॉर को जिस वक्त तक ये सीज फायर के ऊपर कंप्लीटली साइन नहीं करेंगे हम इसको आगे नहीं लेके जाएंगे और नहीं मानेंगे. तो ये जनाब चीजें जो हैं खतरे में जरा नाक होती जा रही हैं. अमेरिका जो है जी वहां पे बहुत सारे अब पोल्स आ रहे हैं जिसमें के जो घंटी बज रही है लोगों की वो ये है कि शायद अमेरिका इज नाउ रेडी फॉर चेंज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री. वो एक लेडी को प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं क्योंकि कमला हैरिस साहिबा जो हैं ट्रंप साहब से बहुत आगे आगे चल रही हैं. एक और खासतौर पे जो सन बेल्ट स्टेट्स हैं वहां पे तो कमला हैरिस कुछ ज्यादा ही आगे हैं. वाशिंगटन पोस्ट एबीसी न्यूज इप्सोस की जो पोल्स हैं और सीबीएस न्यूज यू गव के जो पोल्स हैं वो ये शो करते हैं कि कमला हैरिस को 3% मोर एज है ओवर ट्रंप साहब. न्यूयॉर्क टाइम्स सियाना कॉलेज का जो पोल है वो ये शो कर रहा है कि स्विंग स्टेट्स में ये आगे है. एपी नॉर्थ पोल जो है वो ये शो कर रहा है कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 48% चली गई है कंपेयर टू बाइडन 38% जब वो उन्होंने जो है वो ड्रॉप आउट कर गए थे इसके अंदर से. लेकिन एट द सेम टाइम एक्सपर्ट्स जो है अमेरिका में वो कह रहे हैं कि ये पोल्स जो है बहुत ही मिसलीडिंग हो सकते हैं क्योंकि पोल्स तो ये भी शो कर रहे थे कि हिलरी क्लिंटन 2016 में जीतेगी मगर ट्रंप साहब जीत गए थे और 2020 में भी लग रहा था कि बाइडन साहब जीतते शायद ना ही जीत सके लेकिन वो जीते तो थे लेकिन ट्रंप साहब बहुत उनके क्लोज पहुंच गए थे तो इतना ज्यादा नहीं करेंगे. बहरहाल अभी तक जो आए हैं सारे ही पोल्स उनकी हम आपको डिटेल्स दे देते हैं. पॉली मार्केट जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट बेटिंग साइट्स है यूएस में वो कहती है कि हैरिस हैज 51% सपोर्ट ट्रंप साहब 47 हैरिस को 55.6% सपोर्ट हो सकती है एक और पोल के मुताबिक और ट्रंप साहब जो है उनको 50% हो सकती है. रियल क्लियर पॉलिटिक्स जो है वो भी कह रहे हैं कि ट्रंप साहब जो हैं वो 47.1% पे खड़े हैं हैरिस साहबा 48.1% पे हैं और एबीसी जो है वो ये शो कर रहा है कि जो एबीसी 538 का जो पोल अभी अगस्त 18 यानी कल ही हुआ है उसमें शो किया जा रहा है कि हैरिस जो है 2.6 पॉइंट्स लीड कर रही हैं ट्रंप से तो एज अ रिजल्ट शी स्टैंड्स एट 46.4% ट्रंप साहब 43.8. इकोनॉमिस्ट जो है द इकोनॉमिस्ट का जो पोल आया है उसके मुताबिक हैरिस के पास 48% सपोर्ट है ट्रंप के पास 45.7. न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है जी कि हैरिस के पास 49% सपोर्ट है ट्रंप साहब के पास 47% और ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्वे है ये अभी कल ही आया है. द हिल के मुताबिक हैरिस साहबा के पास 53.5% सपोर्ट है ट्रंप के पास 45.9%. फिर अगेन द इकोनॉमिस्ट जो है वो कहता है जी कि हैरिस 270 इलेक्टोरल कॉलेज जो वोट्स हैं वो जीत सकेंगी और ट्रंप साहब जो हैं वो 268 क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसका उसमें जीत लेना भी जो है वो बड़ी बात है. अमेरिकन प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट जो है वो कहता है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो 275 इलेक्टोरल वोट्स जीत सकते हैं. तो ये सारे के सारे पोल्स और प्रेडिक्शंस जो हैं वो यही कह रही हैं कि कमला हैरिस जो हैं शी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस. तो अब देखना है जी कि अब ये होता है कि नहीं. चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिपिंग साहब वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉक्स कर रहे हैं वियतनाम के जो प्रेसिडेंट हैं टू लैम के साथ इन बेजिंग जो कि इस वक्त बेजिंग में आए हुए हैं जीतने के बाद और उन्होंने कहा था कि मेरा सबसे पहला जो ट्रिप होएगा वो चाइना को होएगा. चाइना जो है इस बात के ऊपर काफी खुश है कि इन्होंने चाइना को जो है वो प्रेफरेंस दी है जीतने के बाद और ये यहां पर आए हैं. हालांकि इनके बीच में साउथ चाइना सी के बीच में लड़ाइयां चलती रहती हैं लेकिन फिर भी वियतनाम जो है वो उसके बारे में आशीष साहब ने कहा कि हमारी जो नेबरहुड डिप्लोमेसी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर जो है वियतनाम है और हम बड़े खुश हैं कि वो सोशलिज्म को डीप कर रहे हैं रिफॉर्म्स ला रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं. लैम साहब ने भी कहा कि ये जो हमारी प्रायोरिटीज हैं चाइना के साथ ये हमारी हमारी जो एक्सटर्नल पॉलिसी है उसका टॉप पिलर है। इसके साथ साथ जो चाइना जो है उसकी लड़ाई लेकिन फिलीपींस के साथ तेज हो गई है और साउथ चाइना सी में दोनों के जो शिप्स हैं कोई उनका आपस में कोलिजन हुआ है जिसका सारे का सारा ब्लेम फिलीपींस ने चाइना पे डाला और उन्होंने कहा कि बहुत ही हेजेमनी चाइना दिखा रहा है, जबकि चाइना के जो कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने एक्यूज किया है फिलीपींस को कि ये इलीगली वाटर्स के अंदर एंटर हुआ था। फिलीपींस कहता है कि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं और चाइना कहता है कि नहीं, ये उनके हिस्से का वाटर है जिसके के अंदर ये शुरू आए थे। तो ये जनाब मतलब कोई ना कोई इलाके के अंदर टेंशन चलती रहती है, एक तरफ दोस्ती भी है दूसरी तरफ फिर जो है लड़ाई भी है। सीएनबीसी की एक रिपोर्ट आ जाइए जी और इसके मुताबिक जनरल मोटर्स वाले जो हैं और 1000 सैलरीड एम्प्लॉयज जो हैं इन देयर सॉफ्टवेयर सर्विस यूनिट्स वर्ल्ड वाइड उनको निकाल रहे हैं। अपनी एक स्टेटमेंट के में उन्होंने कहा जी कि जीएम चूंकि फ्यूचर की तरफ जो है वो देख रहा है तो इसलिए उसमें हमको स्पीड और एक्सेलेंस और बोल्ड चॉइसेस और इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटी जो है वो दिखानी पड़ेगी। इन्होंने जॉब कट्स जो थे ये दे इंक्लूड 600 एट जीएम्स टेक्निकल कैंपस नियर डेट्रॉयट और ये पता नहीं है कि ये इन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए किया है या अदरवाइज किया है, लेकिन ये कट्स आए हैं उस वक्त जब इन्होंने एक रिव्यू बताया था ऑफ ऑपरेशंस, क्योंकि माइक एबर्ट जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज थे उन्होंने मार्च में कहा था कि मेरे हेल्थ रीजंस के लिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। हालांकि ये बहुत ही टॉप जो थी वो अपॉइंटमेंट थी। माइक एबर्ट आपको पता ही है कि फॉर्मर एप्पल के एग्जीक्यूटिव हैं और उनको हायर किया गया था 2023 में टू स्पीयर हेड जनरल मोटर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट्स एंड रीवैम्प इट्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज, लेकिन उन्होंने जो अभी मार्च में कहा कि वो अब कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। तो इससे पहले भी आपको पता है कि जो जनरल मोटर्स ने कहा था कि हम बहुत सारे बंदों को हमने कहा जी कि आप पहले हो तो इस साइड पे हो वो, क्योंकि वो कुछ कह रहे थे हम रीवैम्प कर रहे हैं। तो ये काफी जनरल मोटर्स में प्रॉब्लम्स जो हैं वो चल रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की ये स्टोरी है और इसका ये कहना है जी कि बांग्लादेश के अंदर ये जो शेख हसीना साहिबा ने रिजाइन किया और वो आ गई इंडिया, उसकी वजह से जो हिन्दुस्तान का टूरिज्म है वो 90% उसके अंदर ड्रॉप आ गया है। और जो क्योंकि जब ये राइड शुरू हुए थे बांग्लादेश में तो फ्लाइट्स बहुत सारी डिस्टर्ब कर ली थी जो अभी वैसे रिज्यूम हो गई हैं, लेकिन फिर भी जो पैसेंजर लोड है वो 50% नीचे आ गया है। इंडिया की जो की डेस्टिनेशन है वो बंगाली ट्रैवलर्स की है, 40-45% ऑफ इट्स आउटबाउंड ट्रिप्स जो हैं वो बंगाल से आते हैं यानी कि बांग्लादेश से आते हैं। ज्यादातर लोग तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं 80%, शॉपिंग के लिए 15% और लेजर के लिए 5% बंगालीज जो हैं वो आते हैं। कोलकाता जो है उनका फेवरेट शॉपिंग हब है और इसके अलावा वो बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में सिक्किम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इवन कश्मीर तक जो है वहां पे ये जाते हैं। टूरिज्म जो है इंडिया में 2023 में 43.5% इंक्रीज कर गया था और हालांकि ये फिगर्स जो है 15.5% बिलो प्री पेंडेमिक पीरियड थी, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा जो है वो टूरिस्ट देखे गए। लास्ट ईयर 9.23 मिलियन टूरिस्टों ने इंडिया का दौरा किया था और उसकी वजह से 24,707 करोड़ रुपीस इन फॉरेन एक्सचेंज जो थे वो भी आए थे। बंगालीज जो हैं दे आर 22.5% ऑफ द होल टूरिज्म ग्रुप दैट कम्स टू इंडिया और गवर्नमेंट जो है ऑफ इंडिया है उसने अभी वीजे बंद कर दिए और उन्होंने कहा कि सिर्फ जिनको जेन्युइनली मेडिकल ट्रीटमेंट्स चाहिए वो अब आ सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से वेस्ट बंगाल के अंदर बिजनेस जो है उसके अंदर 90% ड्रॉप आया है। और बांग्लादेश के अंदर अभी भी चीजें जो हैं वो काफी अनसर्टन चल रही हैं, हालांकि मोहम्मद यूनुस साहब उनको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा टाइम लगेगा चीजों सारों को जरा थोड़ा सा सेटअप करने के लिए। ओके जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल। अपने छोटे बड़े इवेंट सारे आप यहां पे कर सकते हैं और इनके पास 32 रूम लग्जरी होटल है और बहुत जबरदस्त यहां पे जो आप अपने स्मॉल और लार्ज और कॉरपोरेट और अपने जो फैमिली के इवेंट्स हैं वो आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहां पे इंडियन पाकिस्तानी और वेस्ट इंडियन कुजीन जो है ये ऑफर करते हैं। बड़े आइडली लोकेटेड हैं 2935 ड्री रोड मिसिसागा में। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इनको कॉल कर लें 6479653823 और डॉक्टर फियाज कुरैशी हर तरह की डेंटिस्ट्री की सर्विसेज आपको देते हैं। डॉक्टर फियाज कुरैशी के जो हैं 3 क्लिनिक्स हैं, 2 मिसिसागा में और 1 स्कार्बरो में। मिसिसागा का जो क्लिनिक है उसका नंबर है 9052325678 और जो स्कार्बरो का क्लिनिक है उसका नंबर है 4167579999। तो آپ ان کو کال کر لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, پاکستان کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے ٹیمپرری سٹے دیا ہے اور پریونٹ کیا ہے ٹرائل کورٹ کو فار ڈیلیورنگ فائنل ججمنٹ ان 190 million pound کرپشن کیس اگینسٹ عمران خان اینڈ ہز وائف بشرا بیوی. دو جج کا جو بینچ تھا آف جسٹسز میاں گل حسن اورنگزیب اینڈ بابر ستار, انہوں نے خان صاحب کی یہ پیٹیشن سنی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ نیب کا جو پریویس ڈیسیجن اس کیس کے اندر آیا ہے اس کے اندر ریکارڈز دیے جائیں. بیرسٹر سلمان صفدر جو کہ خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی کہ اس کیس کے اندر اوریجنلی 8 ایکیوز تھے, 6 جو ہیں اسٹل ایٹ لارج ہیں اور 35 وٹنسز جو ہیں انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا اور کراس ایگزامینیشن ابھی فائنل وٹنسز کا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو فنڈز تھے جو نیب نے کہا تھا کہ یہ بینک کے لیے انٹینڈیڈ تھے, یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے تھے. القادر یونیورسٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی ہے القادر ٹرسٹ کے تھرو جو کہ آپریشنل ہے, یہ کوئی گھوسٹ پروجیکٹ نہیں ہے, یہ ایک چلتی ہوئی یونیورسٹی ہے جو کہ سب کو نظر آ رہی ہے. سپریم کورٹ نے ہالٹ کیا تھا یہ. اس کے علاوہ جو پروسیڈنگ تھی آڈیو لیک کیس میں ایٹ اسلام آباد ہائی کورٹ, اس کے اوپر بھی آج بڑا شور مچایا گیا اور یہ جو رولنگ تھی یہ آئی تھی ڈیورنگ دا ہیئرنگ آف اپیل جو کہ فائل کی گئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کے اگینسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیسیجن میں ان بشرا بی بی اینڈ نجم ثاقب کی جو آڈیو لیک کیس تھا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان جو تھے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ انہوں نے کورٹ کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو مئی 29 کا آرڈر تھا جس میں کہ انہوں نے روک دیا تھا اتارٹیز کو کہ یہ فون ٹیپ نہ کریں, اس نے بہت زیادہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام خراب کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کس نے یہ اتارٹی دی ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کہ وہ لوگوں کی سرویلنس کریں اور یہ کس نے ان کو اجازت دی ہے کہ یہ جو ہے یہ افینسز جو ہیں یہ کریں, یہ جو ہے یہ ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس کی جو سٹیزنز ہیں اس کی بریچ ہے انڈر آرٹیکلز 9, 10A, 14, 19 آف کانسٹیٹیوشن. جسٹس امین الخان نے پھر پوچھا کہ کیا کورٹ نے یہ چیز ڈٹرمن کی تھی کہ یہ ریکارڈنگز کون کر رہا ہے, تو اس کے اوپر ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ انویسٹیگیشنز جو ہیں ابھی چل رہی ہیں اور اس کے اوپر ابھی کوئی کنکلوژن نہیں آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور بشرا بیوی کو جو 15 ڈے کا جوڈیشل ریمانڈ ہے وہ دیا گیا ہے نیو توشاخانہ ریفرنس, اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو اس نے آرڈر کیا ہے کہ عمران خان اور ان کی وائف کو پروڈیوس کیا جائے 2 سپٹمبر کو. تو بس ایک کیس چھوڑتے ہیں دوسرا تیار ہوتا ہے, دوسرا چھوڑتے ہیں تیسرا تیار ہوتا ہے, کسی نہ کسی کیس میں وہ ان کو اب اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں. فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو نیکسس ہے فیض نیازی بشرا یہ بڑا ہی خطرناک ہے پاکستان کے لیے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان اور جو فارمر آئی ایس آئی جو چیف تھے لیوٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید, ان کے بیچ میں ایک بہت ہی انہولی الائنس تھی. پی ٹی آئی جو ہے وہ فارن جرنلسٹ جو ہیں وہ خاص طور پہ جو انڈیا کے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں اور خاص طور پہ فتنہ اور خوارج جو ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن روب حسن صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں پرو ایکٹیو رہے ہیں اور آگے آگے رہے ہیں اور انڈین جرنلسٹوں سے بات کر رہے ہیں اور یہ ساری بات اب سامنے آ گئی ہے اور پارٹی جو ہے اس کا اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا پوری طرح سے سامنے آ گیا ہے. پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ ہے اور ان کے فارن ماسٹرز جو ہیں وہ ان کو آگے لگائے ہوئے ہیں جس میں کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور اس کی سوورنٹی کا یہ سودا کر رہے ہیں. یہ جو ہے پاکستان کو فورن فنڈنگ لے کے جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو سائفر کی کانسپریسی انہوں نے کی تھی اس سے پاکستان کی فورن پالیسی کو بہت دھچکا لگا تھا. انہوں نے کہا جی کہ سوشل میڈیا کا جو سیل یہ روف حسن صاحب چلا رہے ہیں یہ کانسٹنٹلی پاکستان کے اینمیز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ایک سمیئر کیمپین چلا رہے ہیں پاکستان اور پاکستان ملٹری اور اس کے چیف جو ہیں ان کے لیے. یہ لوگ ایک بلڈی ریولیوشن پاکستان میں لانا چاہتے ہیں اور اس سارے کی ساری کی فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے, تو ان کو جو ہے اس چیز سے روکنا چاہیے. یہ انتہائی اینٹی نیشنل ہے اور ان کا ڈبل گول ہے پاکستان کو بھی ہارم کرنا اور آرمی کو بھی ہارم کرنا. اچھا ہم آپ کو بتا دیں کہ روف حسن صاحب نے جو ہے کرن تھاپر صاحب سے جو دا وائر کے سینئر ایڈیٹر ہیں ان سے بات کی ہے. تو اگر بھائی جان صرف میں عطا اللہ تارڑ صاحب کی نالج میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی نالج کے لیے ہم صرف اتنا عرض کر دیں کہ کرن تھاپر صاحب کے ساتھ جو ہے کانسٹنٹلی اور مچ بفور روف حسن صاحب جو ہیں وہ بات کرتے ہیں نجم سیٹھی صاحب. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ فورن جرنلسٹوں کے ساتھ بات کرنے سے روف حسن صاحب نے ایک بڑا اینٹی پاکستان ایجنڈا چلایا ہے, तो उन्होंने तो वैसे कोई एंटी पाकिस्तान बात की नहीं, वो आपको पता ही है कि द वायर और प्रिंट को मैं कितने गौर से जो है मैं सारा फॉलो करती हूं। उन्होंने तो सिर्फ ये बात की है कि इस वक्त पीटीआई और इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द इलेक्शंस, जो कि सारी दुनिया बात कर रही है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है जो कि बड़ी एंटी पाकिस्तान है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि पार्टी के साथ क्या हो रहा है। अलबत्ता अगर आप सारे के सारे टॉक्स, लाइक लेट मी रिपीट अगेन, क्योंकि मैं फॉलो करती हूं रिलीजियसली द वायर एंड द प्रिंट को, तो सारे इंटरव्यूज मैंने उनके, खासतौर पे करण थापर साहब मेरे बड़े फेवरेट जर्नलिस्ट हैं, मैं उनकी कोई भी जो है मैं उनके इंटरव्यूज छोड़ती नहीं हूं, चाहे वो किसी भी के साथ करें। जो नजम सेठी साहब के साथ उन्होंने किए हुए हैं ना, जरा वो आप इंटरव्यू जरा सुने तो शायद आपको पता चले कि एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट किसको कहा जाता है। मतलब मैं नहीं ये कह रही हूं, आप वो इंटरव्यू खुद से सुन के आप अंदाजा लगाएं कि एंटी पाकिस्तान रऊफ हसन का इंटरव्यू है या जो बाकी के लोग, सिर्फ नजम सेठी नहीं और भी बहुत सारे लोग बात करते हैं उनसे, हामिद मीर साहब भी बात करते हैं, तो जो जो बात कर रहा है ना फिर तो आप सबके लिए फिर एक जैसा अक्रॉस द बोर्ड जो है आप एक पॉलिसी दिया करें। रऊफ हसन बात कर रहा है तो वो एंटी पाकिस्तान है, हामिद मीर साहब कर रहे हैं या कि नजम सेठी साहब बात कर रहे हैं तो वो एंटी पाकिस्तान नहीं है। आई मीन आई कुडंट अंडरस्टैंड रियली बिकॉज आई एक्चुअली वॉच करण थापर्स इंटरव्यूज, आई एम वन ऑफ दोज जर्नलिस्ट परहैप्स जो कि उनको फॉलो करते हैं, मैं फॉलो करती हूं करण थापर साहब को, तो मैं उनके सारे इंटरव्यूज जो है वो सुनती हूं। तो आप बाकी लोगों के भी सुने, बाकी पाकिस्तानियों के जिन्होंने करण थापर साहब से बात की है। बहरहाल एनीवेज आपकी अपनी मर्जी है तो लेकिन आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, खासतौर पे वो लोग जो कि इन लोगों को फॉलो करते हैं, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे जर्नलिस्टों को मैं खुद भी जो है पर्सनली भी फॉलो करती हूं, बहुत जबरदस्त वो जर्नलिस्ट है। आई मीन वो जो कि गोदी मीडिया नहीं है, जैसे कि मैंने बड़ी दफा यहां पे आपको नाम लेके रवीश कुमार साहब का भी मैंने आपको बताया, रवीश कुमार साहब को भी मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूं। अब हम अगर उनको फॉलो कर रहे हैं या उनके ट्वीट पे जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एंटी पाकिस्तान है, सवाल ही नहीं पैदा होता। जान आप हमारी ले सकते हैं, हमसे पाकिस्तान के खिलाफ तो बात नहीं आप करवा सकते, लेकिन किसी से बात करना या उसको कोई बताना कि भाई इस वक्त क्या हो रहा है, ये तो वही बात है ना कि अगर किसी बंगाली ने बता दिया कि जी शेख हसीना बड़ा जुल्म कर रही थी बांग्लादेश में और जो है वो सारे जो डायसेंटिंग वॉइसेस थी उनको उसने जेल में डाला हुआ था, तो आप उसको कह दीजिए ये तो एंटी बांग्लादेश है, ये तो नहीं है ना, ये तो फैक्ट्स है ना, तो फैक्ट्स पे अगर कोई बात करेगा तो वो एंटी नहीं होता। एनीवेज अच्छा जनाब, फैज हमीद साहब और जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब हैं, उनके बारे में भी सोर्सेज आए हैं, से खबरें आई हैं कि वो भी इन टच थे। अब ये नहीं पता है कि इनका जो आपस में कांटेक्ट था उसका नेचर क्या था, उनका सोशल रिलेशनशिप था, पॉलिटिकल था, क्रिमिनल था, वो क्या था उसमें कुछ पता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जी कि बहुत सारी कॉन्वर्सेशन जो है इनकी वो भी सामने आई है। अब ये भी नहीं पता है कि जनरल फैज और साकिब निसार जो है 9 मई के अटैक्स के अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन बहरहाल सोर्सेज ये जरूर कहते हैं कि साकिब निसार अब अथॉरिटीज के रेडार के ऊपर है। और कुछ जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें आ रही हैं वो तो ये भी हैं कि साकिब निसार साहब जैसे ही बाहर से आएंगे पाकिस्तान में शायद उनको जो है पकड़ लिया जाए, कस्टडी में ले लिया जाए, लेकिन अथॉरिटीज ने इसके सिलसिले में कोई भी बात नहीं किया। हाल बताइए, खबरें जरूर आई हैं कि बहुत सारा मटेरियल उनको मिला है, अब वो मटेरियल किस कनेक्शन में है वो जो है कुछ पता नहीं है। इसके ऊपर अगेन टिप्पणी देते हुए तारड़ साहब जो है उन्होंने कहा जी कि इन तमाम चीजों का प्लॉट जो है इमरान खान कर रहा है ताकि पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी को जो है खराब किया जा सके, और ये जितने भी अभी रिसेंटली जो लोग अरेस्ट हुए हैं इंक्लूडिंग फैज हमीद साहब, ये सारे के सारे जो हैं इमरान खान के साथी थे। वेरी गुड सर, बहुत ही अच्छी बात है। तो पीछे जरा थोड़ा सा हिस्ट्री में देख लें कि कौन कौन किसका साथी था, तो वो भी आपको फिर पता चल जाएगा कि जो हैं वो कैसे आई हैं गवर्नमेंट्स, है ना, तो वो भी आप जरा देखें। पीपीपी के जो चेयरमैन है बीबी जरदारी साहब, आज उन्होंने बहुत ही जबरदस्त किस्म के दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनका इनॉग्यूरेशन किया है। सबसे पहले तो एक 100 बेड्स ईच का जो जिला हॉस्पिटल ये कराची के अंदर जो एक इंट्रोड्यूस की गई है, बड़ी हाई टेक कैंसर फाइटिंग टेक्नोलॉजी साइबर नाइफ S7FIM उसका इनॉग्यूरेशन किया। ये एक रोबोटिक टेक्निक है जो कि कैंसर सेल्स के जो डोजेस ऑफ रेडिएशन है वो उसको बड़े प्रिसाइसली उसी एरिया के अंदर देती है पेनलेसली और नॉन इन्वेसिव मैनर से। तो ये जो दो डिपार्टमेंट्स यहां पे खुले हैं, एक तो है 120 बेड का डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एंड बिहेवियोरियल साइंसेज एंड 110 बेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट जो है वो खुला है। इस मौके पे बात करते हुए बीबी जरदारी ने कहा कि साइबर नाइफ जो है ये बहुत एक्सपेंसिव मशीन है, और वैसे तो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा एतराज किया जाता है कि सिंध गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, तो सिंध गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं कर रही है तो फिर ये सब कैसे हो रहा है, हम काम पे बिलीव करते हैं बातों पे बिलीव नहीं करते हैं। उन्होंने कहा जी नेशनल
انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سوری کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ، جے پی ایم سی، یہ بیسٹ ایگزامپلز ہیں سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس کی. تو آج خوشی کی بات ہے بھائی، اگر اپنے ملک میں کوئی ترقی آتی ہے تو ہم تو بڑے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جناب، جو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کیا جوک چل رہا ہے، ایک مطلب بارش کو پاکستان میں مذاق بنا لیا انہوں نے. کوئی کہہ رہا ہے بارش کم ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے بارش زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ بھی ایک مدعا ہے پاکستان میں. سندھ منسٹر فار لوکل گورنمنٹ جو ہیں سعید غنی صاحب، آج جناب ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑی سندھ اسمبلی کے پریمیسز میں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہاں ویری سوری، پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے جو فگرز ہیں وہ جو ہمارا کراچی کا ڈی سی ہے یا سکھر کا، شاید وہ ڈی سی کی بات کر رہے تھے، اس سے جو ہے وہ ڈفرنٹ ہماری فگرز ہیں. اس کی وجہ یہ جی، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کا اپنا طریقہ کار ہے بارش کو ناپنے کا. اچھا جی، ہمیں پتا نہیں تھا، ہمیں تو لگتا ہے سر دنیا میں اسٹینڈرڈ طریقہ ہے بارش کو ناپنے کا. وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہمارا سندھ گورنمنٹ کا اپنا طریقہ ہے اور ہم نے اپنے طریقے سے جو ہے وہ ناپی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے یہ ادھر جو ہے وہ جو سندھ کی افیشل فگر آئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا جی سکھر کے اندر 290 ایم ایم رین فال آیا ہے، جبکہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی اس نے کہا تھا کہ 281 ایم ایم آیا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آ گئی، اصل میں جو رین ریکارڈ ہوئی تھی وہ 116 ایم ایم تھی ان سکھر میں 48 آورز میں. تو روڑی کے قریب جو سکھر تھی ادھر پھر کہا گیا جی کہ وہاں پہ 134 ایم ایم رین آئی تھی. تو مطلب ہر بندہ جو ہے وہ ڈفرنٹ تھے. ڈی سی صاحب اور کچھ کہہ رہے تھے، میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کچھ اور کہہ رہا تھا، جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ کچھ اور کہہ رہی تھی، اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ بھئی ایک جو سٹینڈرڈ انٹرنیشنل جو سسٹم ہے اس کو فالو کریں. مگر لوگ آج بڑا ہنسے، اگر آپ آج دیکھیں گے سوشل میڈیا اس پہ کافی لوگ ہنس رہے ہیں کہ بھئی سندھ گورنمنٹ کا اپنا طریقہ ہے رین کو ناپنے کا، جو کہ نہ فرانس کو پتا ہے، نہ انگلینڈ کو پتا ہے، نہ امریکہ کو پتا ہے، نہ اور کسی ملک کو پتا ہے، وہ صرف سندھ گورنمنٹ کو پتا ہے کیونکہ یہ اس کا خاص طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب، ہندوستان کے اندر تو وہی جو ریپ اینڈ مرڈر ہوا ڈاکٹر کا، وہ بڑا ہی بھڑک گیا ہے. آج کی بھی جو رپورٹ ہے انڈیا ٹوڈے کی، اس کے مطابق سی بی آئی جو ہے اس کو اب اپروول دیا گیا ہے کولکتہ کورٹ کی طرف سے کہ وہ لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کر سکتا ہے سنجے روئے کے اوپر، جس کو کہ مین ایکیوز کہا جا رہا ہے ریپ اینڈ مرڈر آف پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ڈاکٹر، جو کہ 31 ایئرز کی تھی، ان آر جی کر میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل. روئے جو تھا اس کو اس وقت اریسٹ کیا گیا تھا جس وقت وہ اس ڈاکٹر جو لڑکی ہے اس کی باڈی ملی تھی سیمینار ہال میں، ہاسپٹل میں، اگست 9 میں. انویسٹیگیشن نے یہ شو کیا تھا کہ جی یہ بہت زیادہ ڈرنک اس دن کیے ہوا تھا، اور ہاسپٹل کے پیچھے ایک اسپاٹ پہ بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا اور پورن واچ کر رہا تھا، اور بار بار ہاسپٹل کے اندر انٹر ہو رہا تھا. حالانکہ اس کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا ہاسپٹل میں انٹر ہونے کا. جو انویسٹیگیٹرز ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت ہی ڈسٹارٹڈ اور ٹوسٹڈ مائنڈ کا آدمی ہے، کیونکہ جس طرح کا پورن یہ دیکھ رہا تھا وہ عام آدمی نہیں دیکھتا ہے، اور اس نے جو ہے ایویڈنس کو بھی ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی. اس نے بلڈ سٹینز جو ہیں اس کو بھی دھویا سین سے، لیکن سی سی ٹی وی کا جو فوٹیج تھا اس نے سارا ریویل کر دیا کہ یہ کس طرح سیمینار ہال میں آیا تھا اور ہاسپٹل میں آ رہا جا رہا تھا. تو ڈاکٹرز جو ہیں سارے ہندوستان کے اندر، وہ نیشن وائڈ پروٹیسٹ جو چل رہا ہے اس کے اندر، انہوں نے کہا جی کہ اس ڈاکٹر کو جسٹس ملنا چاہیے اور جتنے بھی کلپریٹس ہیں ان کو پنشمنٹ ملنا چاہیے. وہ جو لڑکی کا باپ ہے بیچارہ، اس نے روتے ہوئے آج میڈیا کو بتایا کہ میری بیٹی جو تھی اس کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، اس کو صرف ایک بیڈ شیٹ کے اندر لپیٹا ہوا تھا. اس کی جو آٹوپسی کی رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اسٹرینگل کر کے، یعنی کہ گلا گھونٹ کے اس کو مارا گیا ہے. اس کو 16 ایکسٹرنل اور 9 انٹرنل انجریز تھے، لیکن فریکچر کوئی بھی نہیں تھا. کولکتہ پولیس نے جو ہے وہ اس سلسلے میں بہت ساری ٹپنیاں دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اور بھی کچھ لوگ انوالو ہیں، وہ جیسے جیسے لوگ سامنے آئیں گے وہ آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسی مرڈر کیس کے اندر جو ہے ایک لڑکے نے، ایک اسٹوڈنٹ نے سوشل میڈیا پوسٹ پہ ویسٹ بنگال کی جو چیف منسٹر ہیں ممتا بینرجی، ان کو بہت زیادہ تھریٹن کیا، تو کولکتہ پولیس نے آج اس اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو بھی پکڑا ہے. بہرحال ہندوستان میں کافی اس وقت جو ہے وہ لوگ غصے میں ہیں. ڈاکٹرز ان کو پھر سے نربھیا کا جو کیس ہوا تھا دلی میں وہ یاد آ گیا ہے، اور مودی جی کی جو بار بار بات ہوتی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، تو وہ اب کچھ لگ رہا ہے کہ بس وہ نعرہ ہی ہے، اس میں سچائی کوئی نہیں ہے. اکنامک ٹائمز کی جناب یہ رپورٹ ہے، اور یہ جو ہے بہت ہی जो है वो अगेन आई ओपनर है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न. ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इन इंडिया, वो आप देख रहे हैं कि इंडियंस का क्या कनेक्शन है ये जो फॉरेन गैम्बलिंग एप्स हैं इसमें, क्योंकि हिंदुस्तान में अलेजली लोगों ने इन गैम्बलिंग एप से 1,00,000,00,000 रुपया जो है वो कमाया है. तो ईडी ये देखना चाहती है कि इसके जो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं ये ऑनलाइन बेटिंग के इंडियन सोसाइटी के ऊपर, इसके अंदर कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो भी इन्वॉल्व है और बहुत सारा इलीगल एक्टिविटी जो है वो भी इन्वॉल्व है. वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा पैसा जो हिन्दुस्तान में आ रहा है इसके मास्टर माइंड कौन है और इंडियन एंटिटीज कौन सी इन फॉरन कंपनियों के साथ इन्वॉल्व है. वो कह रहे हैं जी कि छोटे छोटे लड़के जो हैं करोड़ रुपए जो हैं यहां पे कमा रहे हैं और इसमें उन्होंने ईडी ने अब हेल्प लेनी शुरू की है वेरियस बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी, ताकि पता चले कि ये जो बाहर से पैसा इतना ज्यादा फ्लो ऑफ फंड्स है ये जो इंडियन अकाउंट्स में आ रहा है इसके ऑपरेटर्स कौन है, पीछे कौन बैठा हुआ है. ये जो एप्स हैं इसके अलावा ईडी ने कहा कि हो सकता है कि जो हिंदुस्तान के लॉज हैं उनको भी जो ऑनलाइन गैम्बलिंग के हैं उनको शायद ये लोग वायलेट कर रहे हैं और इसलिए ना सिर्फ ईडी बल्कि वो दूसरी भी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ मिलके जो हैं ये कर रहे हैं काम कर रहे हैं. तो अब जैसे जैसे इसके ऊपर आएंगी तो डिटेल्स तो पता चलेगा जनाब, मगर पैसा देखें जरा कितना है इसके अंदर, 1,00,000,00,000. ओहो इतनी तो हमको गिनती भी नहीं आती भाई, हमें तो माँ बाप ने 1,000-1,200 तक की सिखाई है और ये जो लंबी लंबी होती है ना ये जब आ जाता है 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ तो बंदा सोचता है इतने पैसे जो हैं ये जो कमाते हैं ये रखते कैसे हैं, ये किधर रखते हैं और ये कैसे गिनते होंगे कि इनके पास इतना पैसा है. बारा जी, अच्छा जनाब निखिल अडवाणी साहब आपको पता ही है फिल्में बनाते हैं, बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर हैं हिंदुस्तान के और उन्होंने आज कहा है जी कि सलमान खान साहब ने एक दफा मुझे एडवाइस दी थी कि जब तुम बड़े सितारे लो तो तुमको कैसे जो है उनके साथ बिहेव करना चाहिए और वो मैंने जो है सीख ले ली थी और इसीलिए मैं इतना कामयाब हूं. 2003 में आपको पता ही है अपना डिक्टेटोरियल डेब्यू कर रहे थे, सॉरी डायरेक्टोरियल डिक्टेटर्स की बातें करते करते हम हर किसी को डिक्टेटर कहें, नहीं नहीं डायरेक्टोरियल डेब्यू जब कर रहे थे कल हो ना हो के साथ, उसमें बहुत बड़े सितारे थे शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सैफ अली खान, तो इसी तरह उसके साथ ही वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी आपको पता है. तो उसने फिर एक और बहुत बड़ी फिल्म जो है सलामे इश्क जो थी वो की थी सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, जॉन अब्राहम, विद्या बालन, अनिल कपूर, जूही चावला, अक्षय खन्ना, आयशा ताकी और गोविंदा के साथ. तो उसमें एक गाना था जिसमें वो बार बार जो सलमान को थे वो कह रहे थे वन मोर टेक. तो सलमान फिर थोड़ी देर के बाद बहुत इरिटेट होकर इनके पास आए और उन्होंने कहा कि अगर तुम बड़े स्टार्स को जो है वो डायरेक्ट कर रहे होते हो ना, मैं नहीं तुम्हें कह रहा कि तुम ये स्टेप निकालो, रखो बेशक, लेकिन ये स्टेप सिर्फ डांसर्स कर सकते हैं, बड़े सितारे जो हैं वो कब अनकंफर्टेबल होने लगे तुम्हें इस चीज का एज जो प्रोड्यूसर जो है वो पता होना चाहिए. है जी पाजी ऐसे है ठीक है. अच्छा जनाब स्त्री 2 ने तो तमाम के तमाम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. अभी 15 अगस्त को ये इंडिपेंडेंस पे रिलीज हुई थी और 4 दिन में इस फिल्म ने 280 करोड़ जो हैं वो ग्लोबली कमा लिए हैं और श्रद्धा कपूर जो हैं वो तो शीज ओवर द मून और जो फिल्म का पोस्टर है वो उन्होंने शेयर करते हुए फोल्डेड हैंड्स डाले और इमोजीज डाले और जो फिल्म मेकर से उन्होंने लिखा हुआ था कि जी 100 करोड़ के क्लब से हम बहुत आगे चले गए हैं, ये एक हॉरर कॉमेडी थी और उसमें इतने लोगों का इंटरेस्ट आया, वह 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 क्या बात है. और जनाब वरुण धवन साहब जो हैं जिन्होंने के अभी ये स्त्री 2 के अंदर श्रद्धा कपूर के साथ एक कैमियो किया था, तो श्रद्धा कपूर जो हैं वरुण धवन के बारे में बात कर रही थी, कहती हैं जब हम 8 साल की मैं थी तो मेरे वालिद और इसके वालिद जो हैं एक फिल्म बना रहे थे और वरुण पे मुझे बचपन से ही बड़ा क्रश था, यानी 8 साल की उम्र से ही फिल्मी थी ये है. तो कहते हैं हम खेल रहे थे, आसपास भाग रहे थे, अचानक हम एक माउंटेन पे चले गए तो मैंने उसको रिवर्स में बोला, मैंने उसको बोला यू लव आए तो उसने कहा नो आई डोंट लाइक गर्ल्स और वो वहां से भाग गया. तो कहता वैसे कहती है कि वैसे तो ये स्टोरी सारों को पता है लेकिन आज मैं फिर से बता रही हूं तो जरा हम बचपन की यादें जो हैं वो कर रहे हैं. पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टेडियम्स जो हैं उनको मैच नहीं करते हैं। और जर्नलिस्ट के साथ आज कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ये बात कर रहे थे, जहां पे कि बहुत बड़ा अपग्रेडेशन वर्क जो है वो चल रहा है। इनफैक्ट सिर्फ कद्दाफी स्टेडियम में नहीं, जो नेशनल स्टेडियम कराची और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है उसके ऊपर भी बहुत मैसिवली काम चल रहा है, क्योंकि ये प्रेपरेशन जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो होने वाली है उसके लिए है। पीसीबी जो है 12.8 बिलियन रूपीज इसके ऊपर लगा रहे हैं। और लास्ट वीक भी उनकी जब मुलाकातें हुई थी हेडक्वार्टर्स में, बीडीपी पेटन जो कि रिनाउन यूके बेस्ड आर्किटेक्चरल कंपनी है, उनके साथ वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमको अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके अलावा आईसीसी जो है उसने भी 70 मिलियन US डॉलर्स जो है इनको दिए हैं फॉर द इवेंट दैट विल टेक प्लेस नेक्स्ट ईयर बिटवीन फरवरी एंड मार्च। और वो कहते हैं जी कि ये एक्सपेंसेस जो है वो सपोर्ट पीरियड में यूज होंगे बिटवीन फरवरी 12 एंड 18। इससे पहले एक दिन पहले भी पीसीबी ने जो टेस्ट सीरीज थी, टू टेस्ट सीरीज जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, वो कराची से रावलपिंडी में शिफ्ट की थी, क्योंकि वहां पे बहुत सारा कराची स्टेडियम में रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और वो नफी साहब ने कहा बहुत तेजी से हो रहा है और चैंपियंस ट्रॉफी तक ये सारा काम खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ पीसीबी ने आज अनवेल किया है 11 मेंबर टीम जो है पाकिस्तान की फॉर द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश, जो कि खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में August 21st को, यानी कि परसों वेंसडे के दिन। इसमें हैं शान मसूद, साउद शकील, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम बैटिंग लाइनअप में, फास्ट बॉलिंग के अंदर शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद अली और नसीम शाह हैं, और राइजिंग स्टार हैं खुरम शहजाद, रिजवान भी इनके साथ होंगे, विकेट कीपर बैट्समैन हैं, और इसके अलावा ऑलराउंडर सलमान आगा भी होंगे एज द ओनली स्पिनर। ये फर्स्ट गेम होगी जिसके के अंदर जेसन गिल्स भी जो हैं एज हेड कोच ऑफ पाकिस्तान टीम सर्व करेंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर आमिर जमाल जो हैं उनको नहीं रखा जा सका, उनको स्क्वाड में रखा गया था लेकिन उनको जो है बैक इंजरी आ गई थी व्हाइल ही वाज प्लेइंग एट वॉरविकशायर इन काउंटी क्रिकेट, तो इसलिए उनको जो है निकाला गया है। और जनाब बांग्लादेश की टीम जो है उसके लिए भी बैड न्यूज है, जो पाकिस्तान के साथ अभी खेलने वाले हैं टू टेस्ट सीरीज। अकॉर्डिंग टू क्रिक बज, महमूदुल हसन उनका जो बड़े स्टार बैट्समैन है महमूदुल हसन जॉय, वो उनको ग्रोइन इंजरी आ गया था जब वो फील्डिंग कर रहे थे सेकेंड इनिंग्स ऑफ 4-डे मैच अगेंस्ट पाकिस्तान शाहीन्स इन इस्लामाबाद। हाई परफॉर्मेंस यूनिट का जो ये मैचेस हो रहे थे उसके अंदर इन्होंने 69 और 65 रन बनाए थे और लग रहे थे कि बड़ी अच्छी शेप में है, लेकिन इंजरी की वजह से अब वो नहीं खेल सकेंगे। इसके साथ साथ बांग्लादेश के जो हेड कोच हैं चंदिका हाथुरुसिंगा, उन्होंने कहा है जी कि हमारी टीम बिल्कुल तैयार है फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान के लिए, और रावलपिंडी की पिच जो है वो काफी अच्छी और फेवरेबल लग रही है, फेवर करेगी बोथ फास्ट बॉलर्स को भी और बैटर्स को भी, और हमारा बहुत ही स्ट्रांग कंटिंजेंट है ऑफ फास्ट बॉलर्स जो कि पाकिस्तान को टफ टाइम देगा। ठीक है जी, और अब हम जाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। ठीक है जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय विलेज टेस्ट, ऑन्टारियोज लार्जेस्ट पाकिस्तानी बफे। आपको पता ही है कि फैसल चट्टा साहब होते हैं, इनके भी दो रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसिसागा में है 4141 डिक्सी रोड पे, इसका नंबर है 9052323663, और दूसरा है लेक शोर रोड वेस्ट पे 2294 ओकविल में, और इसका नंबर है 9052262294। इसके अलावा जनाब हमारे जो हैं वो सुल्तान भाई ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे आप जाएं, अगर आपको कोई भी अप्लायंसेस चाहिए बहुत ही मार्केट से कम रेट पे जो है ये आपको देते हैं, और यहां पे बहुत जबरदस्त किस्म की उनकी अप्लायंसेस हैं। 801 बोवे ड्राइव वेस्ट पे हैं, इनका नंबर है 9054502828। और जनाब अब हम आपको बताने लगे हैं उस किताब का जो कि लिखी गई है दाऊद इब्राहिम पे, हैं जी, और ये जो पुलिस ऑफिसर हैं इन्होंने आज बड़ी डिटेल्स दी हैं। जो नई किताब आई है ये आईपीएस ऑफिसर थे रिटायर्ड डॉक्टर शैलेंद्रा श्रीवास्तवा, ये इनकी किताब आई है शैकल द स्टॉर्म, ये जो इनकी किताब आई है इसमें इन्होंने बड़े चिलिंग कनेक्शंस बताए हैं, जो एक दाऊद इब्राहिम की बेटी का जो ब्राइडल गाउन था उसमें, और जो हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस हुआ था इंदौर में 2005 में, उसके बीच में क्या कनेक्शन था इन्होंने बताया है। डॉक्टर शैलेंद्रा जो हैं उन्होंने जो डिटेल्स हैं वो दी हैं जो जो मध्य प्रदेश की जो क्रिमिनल हिस्ट्री थी, जो डार्क चैप्टर था उसका, उसके ऊपर इन्होंने जो है ये किताब लिखी है। वो कहते हैं जी कि ये जो ब्राइडल गाउन था इसकी बेटी माहरुख का दाऊद इब्राहिम की बेटी जो थी जिसकी के शादी मक्का में हुई थी जुलाई 2005 में, इसको क्राफ्ट किया था टेलर जो था इस्माइल खान, जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। वो कहते हैं जी लेटर इन द मंथ ऑन ऑगस्ट 17, 2005 में क्या हुआ था कि नितिश नगोड़ी 20 साल का एक लड़का था जो बड़ा प्रोमिनेंट सीमेंट मैन्युफैक्चरर जो था इंदौर का, उसका ये बेटा था, उसको किडनैप कर लिया गया था और फिर इसके लिए 4 करोड़ रुपए रैंसम के लिए मांगे गए थे। पुलिस ने जब इसको पकड़ा तो इनको पता चला कि ये जो रैंसम का पैसा जो था अभी तक पे नहीं किया था, तो पुलिस ने पहले ही कार्रवाई बड़ी सक्सेसफुली करके इसको जो है वो निकाल लिया था लड़के को। इन्वेस्टिगेशन जब चली तो उसमें पता चला कि ये जो दर्जी है इस्माइल खान, ये सारे का सारा इस अबडक्शन के अंदर इन्वॉल्व था और इसका ताल्लुक जो था वो एक आफ्ताब आलम नाम के आदमी के साथ था जो कि दाऊद का बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड था। दाऊद जो है उसको भी इस रैंसम में से शेयर मिलना था। पुलिस का कहना है कि इस्माइल जो है वो भाग गया था किडनैपिंग के बाद, क्योंकि उसको जो है दुबई के अंदर एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव कमीशन के साथ साथ जॉब भी ऑफर की गई थी और इसके अलावा इसको कहा गया था कि जो तुम गाउन स्टिच करोगे उसके लिए 1 करोड़ रुपया भी हम तुम्हें देंगे। लेकिन ये दोनों ही यानी कि आफ्ताब भी और ये इस्माइल भी, दोनों देवर ऑन द रन। इन सेप्टेम्बर 2005 पुलिस ने फिर अरेस्ट किया नितिश का जो दोस्त था ध्रुव, ये जो था ये भी एसोसिएट था उसका एक गौरव का, जो कि असिस्ट कर रहा था इस्माइल को इस किडनैपिंग में। जब इनकी इंटरोगेशन ध्रुव की गई तो पता चला कि इस्माइल जो है सारी चीज का मास्टरमाइंड है, और जो पुलिस को जब ये डिटेल्स मिली तो पुलिस ये सारे का सारा जो अंडरवर्ल्ड नेटवर्क है उसकी पिक्चर इनके सामने फिर सामने क्लियर होनी शुरू हो गई। इसमें जो इनको डिटेल्स पता चली पुलिस को, उसके मुताबिक आलम जो था वो भाग गया था मुंबई से इन 1997 और वो गल्फ कंट्री से ऑपरेट कर रहा था ड्यूरिंग द किडनैपिंग, जिसके लिए पुलिस ने फिर इंटरपोल को बताया था और इंटरपोल जो थी उसको अलर्ट किया गया था। फिर वारंट्स जो थे वो जारी किए गए थे इस्माइल और आफ्ताब और दूसरों के लिए, जिसमें के थे रंधावा और इब्राहिम जो कि अभी भी ऑन द रन है, अभी भी इनको पकड़ा नहीं जा सका है। डॉक्टर श्रीवास्तव की बुक जो है वो जो है इट गोज बियॉन्ड दाऊद इब्राहिम, सारी की सारी जो अंडरवर्ल्ड के ऑपरेशंस जो मध्य प्रदेश में होते थे उसके बारे में जो है बहुत ही जबरदस्त किस्म की ये डिटेल्स देते हैं कि ये कैसे कोवर्ट एक्टिविटीज इनके होते थे, और फिर जो दाऊद इब्राहिम का राइवल था छोटा राजन उसकी क्या कहानी थी और वो कैसे ऑपरेट करता था। ये जो कहानी है ये अनफोल्ड करती है एक और स्टोरी इसमें विकी मल्होत्रा की, जो कि की मेंबर था छोटा राजन के गैंग का, और इसको अरेस्ट किया गया था जब मुंबई पुलिस को अलर्ट किया था एक जो एक एनोनिमस फोन कॉल आई थी जो पीछे का जो एक प्रीवियस रैंसम थ्रेट था इंदौर में उसके ऊपर। जो मल्होत्रा था उसका असल नाम विजय कुमार यादव था और इसको जब पकड़ा तो उसने बहुत सारी फिर अंडरवर्ल्ड की डिटेल्स इनको दी, जिसमें कि उनको बताया गया कि मैं तो दाऊद को मारना चाहता था और 3 इसने अटेम्प्ट्स की दाऊद इब्राहिम को मारने की, लेकिन तीनों की तीनों ही इसकी जो है फेल हो गई। और फिर बहुत सारी इस बुक के अंदर और भी डिटेल्स हैं कि कैसे जो इसकी बेटी का की जो डेथ हुई थी और उसका जो बरियल था कराची में, उधर इसको मारने की कोशिश की गई, फिर एक और जगह पे मारने की कोशिश की, फिर एक दुबई में इसको मारने की कोशिश की, लेकिन हर दफा दाऊद जो था वो बच जाता था। इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो यही जो लड़का विजय है या विकी मल्होत्रा है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बताया गया है कि ये एक छोटा मोटा चोर था मुर्शिदाबाद का, और फिर ये छोटा चेतन के उसमें जब गैंग में छोटा राजन के गैंग में आने के बाद ये किस तरह अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा गैंगस्टर जो है वो बन गया और 3 दफा इसने दाऊद तक जैसे बंदे को भी मारने की कोशिश की। वो कहते हैं जी कि जो डॉक्टर श्रीवास्तवा की ये जो बुक है ये एक क्राइम थ्रिलर जो होता है बॉलीवुड का उससे कम नहीं है, और इसके अंदर मध्य प्रदेश की जो अंडरवर्ल्ड की 14 स्टोरीज जो हैं वो उन्होंने लिखी हैं, और ये 14 स्टोरीज डॉक्टर श्रीवास्तवा का अपना खुद का एक्सपीरियंस है जब वो इंदौर रेंज के आईजी थे ड्यूरिंग 2006 और ये वही जमाना था जिसमें के भोजशाला के अंदर राइट्स, कॉम्युनल राइट्स आए थे और इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उनको हैंडल किया था और पूरे का पूरा ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था सिमी, उसको कैसे एक्सपोज इन्होंने किया था। ये स्टोरीज जो हैं, डॉक्टर श्रीवास्तवा कहते हैं कि ना सिर्फ ये मध्य प्रदेश का जो अंडरवर्ल्ड है उसकी ये स्टोरीज हैं, बल्कि ये उन क्रेजियस पुलिस वालों को सलाम है जो ना बिकते हैं ना जिनको खरीदा जा सकता है, और वो हक और सच की जो लड़ाई है उसके लिए वो खड़े रहते हैं। और वो हमेशा उस तरह का पुलिस अफसर आपको हिंदुस्तान में वो कहते हैं हमेशा मिलेगा जो बहुत ही बहादुरी से इन सारे जो ये कल्प्रेट्स और ये गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स होते हैं उनके खिलाफ खड़ा रहता है। डॉक्टर श्रीवास्तवा का कहना है कि ये जो टेल्स हैं मध्य प्रदेश की अंडरवर्ल्ड की और टेररिज्म की, ये मेरी बुक जो है लोगों को एक टेस्ट देगी उस जमाने में कि ये सारे का सारे अंडरवर्ल्ड के लोग जो हैं ये कैसे काम करते थे, हम कैसे ऑपरेट, यानी कि पुलिस जो है वो कैसे ऑपरेट करती थी और वो इन लोगों के पीछे कैसे लगती थी, वो इनके जो एजेंट्स और इनके जो होते थे लड़के जो छोटे मोटे उनको पकड़ते थे और उनसे फिर ये जो है स्टोरीज देते थे और कैसे इन्होंने फिर मध्य प्रदेश के अंदर ये पूरे का पूरा जो नेटवर्क था जो कि छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम वगैरह चला रहे थे उसको कैसे उन्होंने टैप किया, कैसे लोगों को पकड़ा और पुलिस का उसके अंदर क्या रोल था और कैसे फिर ये चीजें सारी जो है वो इन्होंने पुलिस ने फिर अनवेल की जो कि फिर जाहिर है कि अखबारों की सुर्खियां बनी और आपने वो सारी स्टोरीज जो है सुनी। तो ये आज बड़ी इंटरेस्टिंग बुक आई थी इनकी।